हो या हमारे पिता हो, हम हमेशा शोक में रहते। तो क्या तरीका है शोक से बाहर आने का, उसके बारे में शास्त्र वर्णन करते हैं। अगर आज हमसे कोई पूछे कि कौन चला गया, क्योंकि ज्यादातर यही भाषा कहा जाता है कि वो हमको छोड़ करके चले गए, तो कौन चला गया? क्योंकि जिस शरीर को हमने पिता या माता माना था, वो तो हमारे सामने ही हमने उनका अंतिम संस्कार किया कि नहीं किया। जब कोई व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं तो हम उनको अंतिम संस्कार करते हैं, उनको क्रिमिनेशन ग्राउंड तक ले जाते हैं, एंड वी डू द फाइनल रिचुअल्स करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे एक समझदार व्यक्ति, जैसे आपको प्रेयर मीटिंग में बुलाया जाता है, हम भी कई जगह जाते हैं, कहीं प्रवचन देने, कहीं सहयोग करने, कहीं किसी को कंधा देने, कहीं कैसे भी जाते हैं, तो उसमें सबसे प्राइम फैक्टर ये होता है, लोग बोलते हैं अब वो नहीं रहे, अब वो चले गए। पर कौन चला गया? दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कौन चला गया? हम अगर शरीर थे तो शरीर तो अभी भी हमारे सामने है, फिर हमने ये तो कहा कि वो चले गए, तो जो चला गया वो कौन था? कौन था बताइए? आत्मा। तो बहुत अच्छा माता जी ने बताया कि हम आत्मा हैं। अब इसमें समझने वाली बात, एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। क्या मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है, या मैं शरीर हूं जिसके अंदर एक आत्मा रहती है? आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है, या मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा रहती है? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? मैं आत्मा हूं शरीर में रहता। परफेक्ट, अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर में रहती हूं, अच्छा शरीर का एक नाम है, आप नहीं जानते होंगे शायद, शरीर का एक नाम है मरण धर्मा, उसका धर्म ही है मरण। अगर आज कोई मुझसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आई एम 38 इयर्स ओल्ड। लेकिन कोई को देखने में बोल सकता है आप तो अभी जवान है, लेकिन मैं जो बोलूंगा हमारी प्राय भाषा में क्या बोलूंगा, आई एम 38 इयर्स ओल्ड। आज 38 की क्या बात करते हैं, एक साल का भी बच्चा होगा, एक महीने का भी कोई बच्चा होगा, एक दिन का भी कोई बच्चा होगा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसकी मां से पूछो, उसके पिता से पूछो हाउ ओल्ड ही इज, मां बोलेगी इज वन डे ओल्ड। जब कोई प्रोडक्ट बनता है बाजार में, जैसे बिस्लेरी की बोतल आप पानी पीते हैं, इसके ऊपर दो चीजें देखने योग्य होती हैं, एक उसका MRP और एक उसका एक्सपायरी। परफेक्ट। सो एक्सपायरी डेट कब स्टैंप किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इज डन फॉर द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इज बीन स्टैंप्ड, एक्सपायरी डेट इज स्टैंप्ड ऑन द सेम डेट। आप कोई बोले कि उसके कर्म थे, उसको बीमारी हुई, उसका डिसीज हुआ, दैट आर द इंस्ट्रूमेंट्स। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन निमित मात्रम भव सव्य साची, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। अगर तुम आज नहीं मारोगे इस सामने खड़े लोगों को, तो ये तो अपनी नियत मृत्यु में मरने ही वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुमको कलयुग में भी भगवत गीता के कवर पेज पर स्मरण किया जाए, तो मैं तुम्हें यश दिलाना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम मारो, अन्यथा तुम्हारी जरूरत हो। जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जिस दिन हमने जन्म लिया, उसी दिन हमारी सांसें काउंट हो गई और उसी दिन हमारा मृत्यु दिवस निश्चित हो गया, इस दिन मैं जाने वाला। अब चाहे वो बीमारी से जाए, चाहे वो एक्सीडेंट से जाए, वो कारण होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट कारण नहीं है। द अल्टीमेट कॉज इज बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो इसलिए शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शरीर है उसने तो कभी जन्म लिया नहीं, क्योंकि उसका तो नाम ही है मरण धर्म, और जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं। भगवत गीता में कहा गया नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलो दान्ति आपो नैनम सोऽस्यति मारुतः। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को किसी भी शस्त्र को ले लेना, चाकू तलवार या बुलेट्स, तो आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि। अब बोलेंगे कि भगवान को कैसे पता, तो भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15 चैप्टर के 7th श्लोक में कहते हैं, मामेव अंशा जीवलोके जीवभूत सनातना मना सत्तानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। हे अर्जुन, माम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना। इस पृथ्वी पे चिड़िया हो, कौवा हो, एनिमल हो, हाथी हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, माम एव अंशः, मेरा ही अंश। क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, माम एव अंशः जीव लोके जीव। जिस जीव लोक में जितने भी जीने वाले लोग हैं, इसमें जितने भी जीने वाले प्राणी हैं, वो मेरे अंश हैं। तो किसने बनाया हमको? भगवान। उसने तो बोला मेरे अंश हैं, हम सब जो हैं और जो नहीं है वो सब मेरे अंश हैं। अब जिसने बनाया है वो ही बता सकता है कि इसके गुण क्या है और इसके अंदर अवगुण क्या है। जैसे कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, जब मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जब कंपनी कार बनाती है तो उस कार के मैन्युफैक्चरर इंजीनियर्स को मालूम होता है व्हाट आर द गुड क्वालिटीज इन दिस कार एंड व्हाट आर द बैड क्वालिटी, है कि नहीं? मानते हैं आप इस बात को सभी जो बैठे हैं? गुण कौन बता सकता है? जिसने बनाया। अवगुण कौन बताएगा? जिसने बनाया। कृष्ण कहते हैं मेरे अंश है संसार में सारे लोग, तो कृष्ण ही कहते हैं गीता में नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, पावक मतलब होता अग्नि, दहति मतलब जलाना, नैनम दहति पावक। तो हमने क्रिमिनेशन किसका किया? शरीर का। और आत्मा जो हम हैं, क्योंकि अभी आपने ही बोला कि हम तो आत्मा है, वो आत्मा को तो जला ही नहीं सकते, तो किसका क्रिमिनेशन हुआ? वो शरीर, शरीर तो कभी जन्म ही नहीं लिया था, वो तो खाली एक बॉडी हमको मिला, उसमें आत्मा एंटर करी, कुछ समय तक उसने अपनी लाइफ जी, उसके बाद में वो चली। अगर कोई व्यक्ति ये जान जाएगा तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में, कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, देहो अस्मिनिम यथा देह कौवरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रनामोयति। बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, अगर हम इसको ध्यान से समझे, देहो आस्मिनिम यथा देहा, दो बार देह शब्द का इस्तेमाल हुआ, देह और देही। मेरे शरीर के अंदर जो रहता है वो देही है, मतलब इस शरीर को धारण करने वाला। देहो आस्मिनिम यथा देही, देह के अंदर एक देही रहता है, मतलब मैं इस शरीर में रहता हूं। देहो आस्मिनिम यथा देही, और उस अवस्था में जाता है, पहले बच्चा होता है कौमरम, फिर बड़ा होता है यौवनम, फिर जरा बुढ़ापा, कौमरम यौवनम जरा, उसके बाद तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह को प्राप्त कर लेती है ये देही। धीरस्तत्र नामोयति, धीर व्यक्ति जो होता है, समझदार जो होता है, वो ऐसी अवस्था में शोक अर्जुन नहीं करता है। धीरस्तत्र नामोयति। तो हमें समझने वाली बात है कि आज प्रभु जी के इस शरीर में न रहने के कारण हम शोक अवस्था में हैं। हमें इमोशनल होना चाहिए, और हमारे पारिवारिक सदस्य जब चले जाते हैं तो हमको सच में दुख होता है, और होना भी चाहिए हमारे अटैचमेंट्स के कारण, परंतु हमारा कार्य नहीं रुकना चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपने जीवन के कार्य छोड़ करके बैठ जाते हैं। आप जानते हैं भगवान ने चार वर्ण बनाए, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण के आधार पर और कर्मों के आधार पर भगवान ने हमारी सोसाइटी को चार वर्ण और चार आश्रमों में बांटा। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम में बांटा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अब जब भगवान ने ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बांटा, तो ये कास्ट के आधार पर नहीं बांटा, शर्मा, पंजाबी, सिख, क्रिश्चियन, ऐसे नहीं बांटा। हाँ, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणा कर्म विभागशा, अकॉर्डिंग टू योर गुण, मीन्स योर क्वालिटीज एंड एक्शंस, व्हाट यू डू।
Maybe someone has born in a Shudra family and having an intelligence of reading scriptures like Bhagavad Gita and speaking Bhagavad Gita, he has got a quality of a Brahmana. Then he is considered as a Brahman. If somebody is born in a Brahman family and he is an alcoholic person and he doesn't have any interest in scriptures, he will be counted as a Shudra. He is not a Brahmana. Because Bhagavan keh rahe hai, Guna Karma Vibhakasha. Now, that is why जो पहले जमाने में लोग होते थे, शास्त्र है गरुड़ पुराण, थोड़ा सा उस पर बोलूंगा. मैंने जब भी गरुड़ पुराण पे बोला है, कई बार लोग डर जाते हैं. गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है, हमारे वेद व्यास ने लिखा, 18 पुराणों में से लिखा गया, जो कि बना ही ऐसी स्थिति के लिए है जब व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है, तो ये शास्त्र उसके लिए पढ़े जाते हैं जो रह जाते हैं. देखिए, जो चला गया वो तो सुन नहीं रहा, सुनता कौन है? जो परिवार के लोग रह रहे हैं. लोग कहते हैं जब कोई गुजर जाए तो घर में गरुड़ पुराण करना चाहिए. किसके लिए? जो रह जाए. क्यों? ताकि वो समझ जाए अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है. टाइम वेस्ट चला जाएगा, जैसे हमारे परिवार के लोग चले गए, हम भी एक दिन चले जाए. ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं कभी, मेरे लिए कोई प्रेयर मीटिंग नहीं होगी, मेरे लिए भी होगी. हम सब उसी स्मरण धर्मा शरीर के हिस्से हैं. एक बार 5 पांडव जब वन में गुजर रहे थे, उनको 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था. उन 13 वर्षों में 5 वर्ष उन्होंने वृंदावन के पास में कामा वन में गुजारे और वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है यक्ष कुंड. जब वहां पर नकुल सहदेव जल पीने के लिए गए तो वहां बैठे एक यक्ष ने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर ना दे जाने पर नकुल सहदेव बेहोश होकर गिरे. थोड़ी देर बाद भीम आए, वो भी गिर गए. फिर अर्जुन आए, वो भी गिर गए बेहोश. बाद में युधिष्ठिर जो कि धर्मराज है, वो आए और उनसे यक्ष ने 108 प्रश्न पूछे इस संसार के लिए और वो हम सब के लिए पूछे. हम सब प्रोफेशनल्स के लिए पूछे, हम सब बिजनेसमैन के लिए पूछे, हम सब घर में रहने वाली गृहणियों के लिए पूछे. वो सब प्रश्न पूछे, उन सबके उत्तर एक एक करके क्रम से युधिष्ठिर महाराज ने प्रदान किए. उसमें से सबसे मुख्य प्रश्न था, इस संसार की सबसे आश्चर्यचकित चीज क्या है? What is the most surprising thing in this world? युधिष्ठिर कहते हैं, निधनम पश्यन अपि न पश्यते. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, निधनम, जिस व्यक्ति का निधन हो जाता है, निधनम पश्यन, जब हम देखते हैं, पश्यन मतलब देखना, निधनम पश्यन अपि, देख करके भी न पश्यते, हम देख नहीं पाए. क्या? कि जब कोई गुजर गया, हमको लगता है ओ, जैसे प्रेयर मीटिंग में हमारे परिवार के लोग आते हैं, हमें लगता है ओ, बहुत दुख हुआ, चाचा जी नहीं रहे, ताऊ जी नहीं रहे, अंकल जी नहीं रहे. और फिर आते हैं और लगता क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, पश्यन अपि न पश्यते. अभी भी समझेंगे नहीं भगवद गीता पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में. आएंगे, सोचेंगे मेरा एक कर्तव्य था, एज अ सेक ऑफ गोइंग आई वेंट देयर, आई सेट डाउन, आई सेट ऑफ सो सॉरी एंड आई केम बैक इनटू माय मटेरियल वर्ल्ड. में वापिस आ जाऊं, देख कर भी नहीं देख पाता हूं कि कल मैं भी इस शरीर से जाऊंगा. और जीते जी अगर मैंने राम नाम का भजन नहीं किया, मैंने कृष्ण नाम का भजन नहीं किया, तो मेरी जो ये यात्रा है ये अपूर्ण रह जाएगी. इट विल बी नॉट कंप्लीटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार ऐसे एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, उसने देखा कि अर्थी पर एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, तो पिता ने अपने पुत्र से पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये सारे के सारे लोग कंधे पर ले जा रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? तो उसने सुना ध्यान से, नीचे जो 4 लोग उठाए थे वो बोल रहे थे राम नाम, क्या है? राम नाम सत्य है. तो उसने कहा, आयरनी ऑफ द सिचुएशन, देखिए विडंबना है समाज की. उस बच्चे ने ये प्रश्न उठाया हम सबके लिए, हम जैसे बूढ़ों के लिए. उसने प्रश्न उठाया, पूछा कि पिता ये किसके लिए बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? उन्होंने कहा, बेटा जो गुजर गए क्या वो सुन पाएंगे? कहा नहीं, वो तो शरीर छोड़कर चले गए. बोले फिर किसके लिए बोल रहे हैं? बोले जो बोल साथ चल रहे हैं उनके लिए, क्या क्या ये सुन पा रहे हैं? ये सिर्फ बोल रहे हैं. वाच्य होता, वचन होता है ना, जैसे सिर्फ बोलने के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इट. राम का नाम सत्य है, ये शरीर छोड़ने के बाद ही क्यों याद आता है? जीते जी क्यों याद नहीं आता कि जब तक प्राण है तब तक क्या करना चाहिए? राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है.
हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हर इस कलयुग के अंदर अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, प्रस्तिशन में है, परेशान है, उसको एक ही चीज निवारण कर सकती है, हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम, तीन बार बोला गया। एव केवलम, ओनली द सॉल्यूशन इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप। जैसे आप आए और आज आपको मान लो पता चल गया कि हरि नाम ही सब कुछ है, कितने लोग इस हरि नाम को ले पाएंगे वापिस जाकर। शास्त्रों में कहा गया कलयुग के लिए 16 अक्षर का मंत्र बताया गया, 16 नामों का मंत्र, षोडश नाम कान्वितम, एक ऐसा मंत्र जिसमें 16 नाम आते हो वही कलयुग में चलेगा, बाकी कोई मंत्र नहीं चलेगा। जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें 16 नाम नहीं है, गायत्री मंत्र 16 नाम नहीं है। कलयुग में कहा गया षोडश नाम कान्वितम, जो व्यक्ति 16 नामों का मंत्र बोलेगा वही व्यक्ति कलमश को काट पाएगा कलयुग के, वरना दुखी में रहेगा। कभी किसी के जाने का दुख, कभी किसी के आने का दुख, कभी उल्टा बोल देने का दुख, कभी मेरे को ना मिलने का दुख, अनसेटिस्फेक्ट्री दुख, मेरे अचीवमेंट फेल हो जाने का दुख, दुख हमेशा रहने वाला है अगर हम षोडश नाम कान्वितम 16 नाम का मंत्र नहीं बोलते। पता है आपको कौन सा मंत्र है? कहते हैं तीन प्रकार के पुत्र होते हैं, एक होता है बेटा, बेटा मतलब होता है जो पिता के गुजर जाने के बाद से बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़े करता है, चार भाई बैठ जाते हैं कहते हैं मेरा मेरा दे दे, बहने बैठ जाती आजकल तो वो होता है बेटा। तो अगर हम अपने बच्चों को बंटवारा कराना चाहते हैं अपने जाने के बाद, तो हम उनको प्यार से बोलेंगे बेटा इधर आओ बेटा, बाद में वो बेटा बंटवारा। एक होता है लड़का, ये हमारा लड़का है, लड़का मतलब होता है जो कि प्रॉपर्टी ना मिलने पर बहुत लड़ता है और कहता है अरे पिताजी चले गए ऐसे कैसे मेरे को नहीं देखेगा, मेरा भी बराबर का हक है, वो कहते हैं तो प्रॉपर्टीज के झड़ाई झगड़े चलते हैं। मैंने देखा है, निजी अनुभव है, वो भाई तो साथ साथ रहते थे, एक ही कार में शेयर करते थे, एक स्कूटर पे, एक ही साइकिल पे चलते थे, वो मतलब स्टोन थ्रोइंग तक हो जाती है, एक दूसरे में पथराव कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें से कैसे आधा आधा, कितना एक भी रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो आप सोचिए ये है लड़के। और तीसरा होता है पुत्र, पुत्र वो होता है जो पिता के गुजर जाने के बाद में भगवत गीता के कार्यक्रम करवाता है, जो ही करवाया जाए, और अपने पिता माता के गुजर जाने पर हरि नाम का कीर्तन करवाता है। क्या करवाता है? हरि नाम का कीर्तन, और 16 नामों के मंत्र को सुबह शाम जपता है ताकि वो आत्मा कम से कम अपने गंतव्य पर पहुंच जाए, दुख ना मिले उसे। बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, द सोल रेस्ट इन पीस, सोल कभी पीस में रह नहीं पाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं जिस दिन शरीर छूटता है उसके 10 दिनों तक वो आत्मा वहीं रहती है, 10 days। अभी कई लोग चौथा करते हैं और चौथे में प्रेयर मीटिंग करके फिनिश ऑफ कर देते हैं और अपने डेली एक्टिविटीज में लग जाते हैं, और वो कहते हैं हमारे यहाँ यही नियम है। नियम जी आप नहीं बना सकते हैं, आप बोले ट्रैफिक लाइट है देहरादून में कोई के घर गए थे, वो बोले हमारे यहाँ रेड लाइट की कोई अहमियत नहीं है, हम लोग तो ऐसी पहाड़ी इलाके में स्कूटी लेके निकल जाते हैं, रेड लाइट को हम काउंट नहीं करते हैं। दिल्ली में काउंट होता होगा, देहरादून में काउंट नहीं होता। मैं कहा जी रूल आप नहीं बनाते हैं, रूल गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म को भगवान ने बनाया, नियम को भगवान ने बनाया। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जब वो शरीर छोड़कर जाता है आत्मा 10 दिन तक वहीं रहती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का। 10 days, 10वें दिन शुद्धि होने के बाद में 13वें दिन यात्रा प्रारंभ होती है उस आत्मा की, और उसको अपने स्थान से जहां वो रहते थे जैसे द्वारका में, वहां से उस आत्मा को अपने गंतव्य स्थान जजमेंट डे तक जाने के लिए 1 वर्ष लगता है, पूरा 11 महीने मतलब लगते हैं, टोटल 11 months। 11 महीने में वो आत्मा वहां पहुंचती है जजमेंट के स्थान पर जहां चित्रगुप्त होते हैं, और फिर वहां पर निर्णय लिया जाता है, जो आत्माओं ने गंदे काम किए उनको नर्क में भेजा जाता है, जिन आत्माओं ने अच्छे काम किए उनको स्वर्ग में भेजा जाता है, उनके कर्मों के डेटा के हिसाब से, MIS के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से उनको अगला शरीर प्रदान किया जाता है। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान का नाम कीर्तन करते थे, जो भगवद गीता पढ़ते थे, जो भगवद गीता सुनते थे, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लिया, जो सिर पे तिलक लगाते थे, जो गले में कंठी पहनते थे, तुलसी की सेवा करते थे, उन लोगों का निर्णय होता है कि अब इस आत्मा को दोबारा न नरक में जाना है न स्वर्ग में जाना है, इसकी स्वर्ग नरक की यात्रा खत्म करो, इसको वैकुंठ भेज दो। वैकुंठ का मतलब है कुंठा रहित जगत, एंजाइटी फ्री, वहां पर कोई कुंठा नहीं मिलती है। और फिर वो आत्मा के लिए स्पेशल विमान आता है और उस विमान में बिठा करके उस आत्मा को कहां ले जाते हैं, वैकुंठ धाम, कृष्ण धाम, विष्णु धाम। उस धाम में जाने के लिए लेकिन करना पड़ेगा, या तो हम कर ले, या तो हमारे पुत्र को हम इतना संस्कार दे दे कि हमारा पुत्र भक्ति करने लग जाए, जैसे प्रहलाद महाराज। यहां पर नरसिंह भगवान का फोटोग्राफ है, इस साइड में भी, इस साइड में भी। ये लॉर्ड नरसिंह का है, जिन्होंने शेर के रूप में आधा शेर का शरीर और आधा इंसान का शरीर लेकर के प्रकट हुए। लेकिन ये क्यों आए भगवान, पिलर में से निकल के खंभा फाड़ के भगवान आए, इसका कारण था हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस थे, जिनके घर में एक पुत्र हुआ था प्रहलाद, जिसने अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही सारा भागवत का ज्ञान सुन लिया था नारद मुनि के द्वारा। तो उनके मन में अभिलाषा थी कि भजन करूंगा। 5 साल का छोटा सा बच्चा, उसको जब बोला जाता था बोलो असुर बनना सबसे अच्छा होता है, हमें राक्षस बनना है, भगवान कुछ नहीं होता। आजकल स्कूल्स में भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है, देयर इज नो गॉड। मैं जब एमबीए करने गया, फिर मैं लंदन में पढ़ने गया, जब मैं पढ़ करके वापस आया तब तक मुझे भी यही लगता था देयर इज नो गॉड, जबकि मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ। फैमिली बोलती थी, लेकिन मेरी एजुकेशन, मेरा स्टेटस उस नॉलेज से ऊपर निकल गया था, और इसलिए मुझे घर वालों की बात स्वीकार नहीं होती थी कि देयर इज गॉड। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कितनी डेप्थ है, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी भगवद गीता पढ़ रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाले भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आज जब जाता हूं कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए, तब पता चलता है समाज को भगवद गीता की कितनी जरूरत है। मैं इतना मूर्ख था, मैं घूम रहा था अपना एमबीए करके ईगो में, लंदन घूम रहा हूं, जॉब्स में घूम रहा हूं, और सोच रहा हूं कि बस मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, जबकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जब तक गीता पढ़ना नहीं शुरू किया, जिस दिन भगवद गीता पढ़ा तब समझ में आया, ओह आई एम सो फॉलन, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। मेरे 15 साल 17 साल वो स्कूल के कॉस थीटा और इनर्शिया और मैनेजमेंट पढ़ने में वेस्ट हो गया, जो कि मेरी लाइफ में कभी यूज नहीं आया। यूज तो आता है भगवद गीता, जब प्रॉब्लम आती है तो फिर भगवद गीता का अगर श्लोक हमारे को मालूम हो तो हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर हम जानते हो कि मात्र स्पर्शस्त कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपानयम अनित्य नाम ताम प्रतिक्षुह भारत, ये सारा संस्कृत मैंने इस्कॉन में आके याद किया। मैं तो साइंस स्टूडेंट था, मैनेजमेंट पढ़ता था, तो मुझे आता नहीं था। प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने 86 लैंग्वेजेस में ये भगवद गीता लिखा, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग 15 इयर्स बैक, पढ़ते 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 फिर कुछ वर्ष बाद मैंने इस्कॉन आ गया फुल टाइम, मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ भी छोड़ दिया, और मैंने कहा ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, घर घर में जाऊंगा चाहे लोग मुझे धक्का दे, लेकिन मैं लोगों को सुनाऊंगा, गीता नहीं है तो लाइफ वेस्ट है, life is waste. How old are you? It doesn't matter. You are 10 years old, 20 years old or 90 years old. Bhagavad Gita is for all. Prahlad Maharaj 5 साल के थे और उनके टीचर सिखाते थे there is no God, भगवान नहीं है, और वो भी यही बोलते थे क्या भगवान है, क्योंकि उन्होंने तो माता के गर्भ में ही सीख लिया था नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ भक्त से। और कंपटीशन हुआ, एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा पुत्र तुमने क्या सीखा स्कूल में, कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मैंने सीखा श्रवण करो, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो। कहते अच्छा तू मुझे सिखाएगा, ये नहीं जानता कि राक्षस सबसे श्रेष्ठ थे, तेरा पिता तीनों लोकों में, स्वर्ग में, पृथ्वी में और नीचे के सभी लोकों में राजा है, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, कहां है तेरा विष्णु, तो डर करके छुप गया है, मेरे सामने आता भी नहीं। कहा पिताजी आप ऐसी बातें मत करिए, विष्णु तो कण कण में विराजमान है। कहां है विष्णु, अगर है तो आता क्यों नहीं, मैंने तुझे कितना कष्ट पहुंचाया, हाथी के नीचे तुझे दबाया, पानी के अंदर फेंकाया, तुझे पत्थरों के अंदर कुचलवाया, तुझे पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन फिर भी तेरा विष्णु तुझे बचाने के लिए नहीं आया। कहा क्योंकि वो कष्ट में सहन कर सकता था और विष्णु उन कष्टों के द्वारा मेरा शुद्धिकरण कर रहे थे, प्यूरिफाइंग मी, और इसलिए उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी वो आएंगे। कहा ठीक है, आज मैं तेरी गर्दन काटता हूं, देखता हूं तेरा विष्णु आता है। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोलने लगे भगवान का नाम कृष्ण 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 कृष्ण। और इतनी देर में उस हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और कहा कहां है तेरा भगवान। अपने महल का एक पिलर पे तोड़ दिया, दूसरा पिलर जैसी तोड़ने लगा कहां है तेरा विष्णु कहां है तेरा कृष्ण। जैसे ही दूसरे पिलर को टच किया पिलर फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो नरसिंह भगवान जब आते हैं ऐसे करके उठा लेते हैं उस राक्षस को हिरण्यकश्यप को जिसने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा से, न सुबह मरूं न शाम को मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न इंसान से मरूं न जानवर से मरूं, 12 महीने में से कभी ना मरूं। इतना पावरफुल मंत्र मांग लिया, 12 महीने से बाहर कैसे मारेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा आपने तो बड़ा टिपिकल वरदान दे दिया, अब मुझे इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तब भगवान नरसिंह जो है वो तो भगवान ईश्वरम परम कृष्ण, कृष्ण सबसे परम भगवान है। शिव ब्रह्मा गणेश हनुमान सभी 33 करोड़ देवी देवता उस कृष्ण का भजन करते हैं। ये कोई स्कॉन ने नहीं बनाया है। अगर आप पुराण खोल करके पढ़ेंगे ना हमारे हमारे स्कॉन के अंदर सारी बुक्स मिलती हैं, या आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, गूगल पर जाके भी परचेज कर सकते हैं। और मैं अभी इंटरनेशनली भी जाकर के मैंने देखा है, बहुत जगह पर सेमिनार दिए हैं, बहुत सारी संस्थाओं में बोला है, पिछले 15 साल से इस कार्य में हो, मैंने देखा है कि कोई स्क्रिप्चर के अगेंस्ट बोल ही नहीं पाता, क्योंकि ये प्रूफ है भगवत गीता ये। और आज का नहीं है, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया, तो इसलिए इसके आगे कोई कोई कॉन्ट्रडिक्टरी कर ही नहीं सकता कि आप कैसे बोल रहे हैं जी। बोले ऐसे बोल रहे हैं यहां पे, जैसे मैथमेटिक्स का बेसिस है आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स, आयुर्वेद का बेसिस है वानभट्ट का आयुर्वेदा, ऐसे ही हमारे ज्ञान का बेसिस है वेद व्यास के पुराण उपनिषद और भगवद गीता। इसके अगेंस्ट कौन बोलेगा कि शिव जी भगवान है कि गणेश जी भगवान है। बोले ये सारे के सारे भगवान है, लेकिन परम भगवान कौन है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण है गोविंदा। ये हम नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, शिव जी बोल रहे हैं जिनकी हम उपासना करते हैं, दुर्गा बोल रही हैं जिनके नवरात्र में रखे जाते हैं। एक बार जाके पढ़िए तो जरा दुर्गा क्या कहती है शिव जी क्या कहते हैं। अगर सच में उनका भजन करना है कृष्ण का भजन किए बिना कृपा मिलती नहीं। ये बात प्रहलाद ने बोली और वहां पर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान आए, आधा जानवर का शरीर लिया आधा इंसान का शरीर लिया। मारने के लिए बोला न अस्त्र हो न शस्त्र हो, भगवान ने नाखून निकाल करके कहा मारूंगा, न बाहर मरू न अंदर, भगवान ने कहा गेट के बीच में कॉरिडोर में मारूंगा। बोला न सुबह न शाम, भगवान ने कहा संध्या वेला में मारूंगा, 4 बजे से 7 बजे के बीच में। बोला 12 महीने से कभी ना मरूं, 12 मंथ्स के बाहर। तो भगवान ने एक और मंथ बना दिया जो इस साल आने वाला है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास, वो भी आएगा 15 मई से 15 जून। आप देखेंगे हिंदी कैलेंडर में हर 2.5 साल बाद एक महीना एक्सटेंड हो जाता है। वो एक्सटेंड होकर के पुरुषोत्तम मास इसीलिए आया क्योंकि पुरुषों में उत्तम नरसिंह ने अपने भक्त को बचाने के लिए उसके पिता का उद्धार करने के लिए ऐसा वर ले लिया, ऐसा स्वरूप धारण किया। और जब भगवान मार रहे थे ना उसको, तो एक्चुअली उस पर कृपा ही कर रहे थे, भगवान ढूंढ रहे थे उसके शरीर के अंदर कि ये मनुष्य शरीर मिला कि इसमें कृष्ण का मैं यहां पर वास करूं, लेकिन कृष्ण की जगह तूने तो इसके अंदर अहंकार को बिठा लिया। क्या तेरे पास मैंने एक राजा बना दिया तुझे, तुझे अहंकार हो गया। अगर कोई मिनिस्टर बन जाए, एमपी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर भगवान को भूल गया तो वो जीरो है। एंड टाइम में ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे भगवान उसकी आत्मा के साथ ना उसको नर्क भेज देते हैं, गरुण पुराण में लिखा। तब फिर प्रहलाद ने क्या कहा, जब प्रहलाद इतना क्रोध था भगवान को, हिरण्यकश्यप ने उनके भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया ना, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध था कि स्वयं शिव जी आ गए, कहा शांत हो जाओ। भगवान शेर की तरह घुर्रा रहे थे, उग्र नरसिंह उग्र रूप में नरसिंह प्रकट थे, शिव के बोलने से नहीं रुके। लक्ष्मी जी स्वयं की पत्नी उनसे भी कह रही थी इसको तो मैं नहीं रोक सकती, बहुत गुस्से में भगवान है, का कौन रोकेगा, का उन्हीं के भक्त को आगे गए। तो छोटा सा 5 साल का प्रहलाद नरसिंह जिनके आगे लाखों हजारों सैनिक ऐसे फूंक से उड़ जा रहे थे, उसको शांत करने के लिए प्रहलाद को भेज दिया गया। और प्रहलाद निडर था, भगवान का भक्त निडर होता है, चले गए जाकर के नरसिंह भगवान के पांव को जैसे छुआ, नरसिंह भगवान एकदम शांत हो गए, जैसे कोयले को जलते को उठा के पानी में फेंक दो तो एक आवाज आती है ना, एकदम से शांत हो जाता। और इससे भगवान शांत हो गए और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और अपनी जीभ लेकर के उसको चाटने लगे और वात्सल्य से मदरली लव से इतना भर गए और बोले, बोलो प्रहलाद, तूने बहुत कष्ट सहे मेरे कारण, मेरा भजन करने के लिए इतना लोगों ने तुझे परेशान किया, तूने कभी मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहा, प्रभु मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। हम लोग कैसे हैं, छोटी से सिर में भी दर्द होता है तो बोलते हैं भगवान, ओ गॉड प्लीज सेव मी, गॉड जैसे हमारा नौकर है। हमने कभी गॉड को गॉड माना ही नहीं। गॉड इज ग्रेट, व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, वी आर द सर्वेंट ऑफ द गॉड, हम उनके दास हैं। तुम स्वामी, हम सेवक, हम सेवक है, सेवक को भगवान की सेवा करनी चाहिए। हे प्रभु, मैंने इसलिए कभी आपको बुलाया नहीं क्योंकि मैं सेवक हूं। भगवान बोले, आज क्या चाहते हो, मांगो। कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये दो कि मेरे जीवन में जो कुछ बची कुछ इच्छा वो भी समाप्त हो जाए। भगवान बोले, नहीं नहीं कुछ तो मांगो। कहा, ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो मैं एक चीज चाहता हूं, मेरे पिता ने आपका बहुत अपराध किया। बोले, कृष्ण नाम का कोई भगवान नहीं है, भगवान केशव होते ही नहीं है और विष्णु नाम का कोई भगवान नहीं है, मैं ही राजा हूं, ऐसे करके बोलता रहा। उसने बहुत अपराध किए प्रभु, उसको आप नरक में मत भेजो, उसको आप मारा आपने, आपने उसको धाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आप उस पर कृपा करें बस। भगवान बोले, भागवत के सातवें स्कंद में आता है, त्रिशतम भी पुत्र पिता, भगवान ने कहा त्रिशत भी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जहां पर कृष्ण जैसा भक्त आ जाता है ना, कृष्ण का कोई, त्रिशत भी पिता पूता, मतलब पिता की 7 पीढ़ियां, माता की 7 पीढ़ियां और इस बच्चे की जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं, 21 पीढ़ियां भगवत धाम में निवास करती हैं। अगर एक बच्चा क्या बोलने लग जाए, एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम के मंत्र को जो जपता है ना, अगर उसने आजीवन काल जब तक शरीर में ये आत्मा है तब तक जपता रहा, तो भगवान कहते, मैं गारंटी लेता हूं प्रहलाद, भगवान के वर्ड, भगवान अपने बातों से चलते नहीं, वो भगवान है, हमारी तरह नहीं है, आज बोला कल पलट गए, भगवान इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, व्हाट आई से आई डू। भगवान कहते, मैं जो बोलता हूं उससे मैं करता हूं। त्रिशत भी पिता पूता, 21 पीढ़ियां उसके पिता की और उसकी माता की, 7 पीढ़ियां और 7 आने वाली, सबको भगवत धाम भेज दूंगा। तो प्रहलाद बोले, मेरे पिता का क्या हो? बोले, अरे बोल दिया तो फिर बोल दिया ना, मतलब बोले आगे देखो, देखा तो एक विमान के ऊपर बैठ करके पाप करने वाले हिरण्यकश्यप राक्षस को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया, वैकुंठा, जहां पर जाने के बाद में वापस इस जगत में नहीं आना, क्योंकि एक बच्चा भक्त बन गया। तो एक बार कहीं मैं जब लेक्चर दे रहा था तो मुझसे कुछ फैमिली पूछ रही थी, जिनके पुत्र ना हो क्या करें, भाई पुत्री होगी, पुत्र ना हो तो क्या करें, क्योंकि भगवान ने पिता पूता कहा, पिता पुत्री नहीं कहा, तो पुत्री जो नहीं है वो क्या करें, उसको वो तो शादी करके दूसरी फैमिली में चले गए, उसका उसके माँ बाप की वो एक ही लड़की है, उसका क्या हो? तो मैंने कहा, बेटी क्यों करते हो पुत्री का, आप भक्त क्यों नहीं बनते, आप ये इंतजार क्यों कर रहे हो कि बच्चा भक्त बन जाए, मैं इंजॉय करके चला जाऊं, नहीं, आपके पास समय है, एक पल में भी आप भक्त बन सकते हो, व्हाई टू वेट, और करना भी क्या है? कोई आपसे ये बोल रहा है कि रोज मंदिर में नाक रगड़ने आना है, कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको, जैसे होता है कुछ संप्रदायों के अंदर, कि कोड़े लेकर अपने शरीर पे बरसाने हैं, या फिर आपको भालों को अपने मुंह के इधर से इधर निकाल देना है, या राख के ऊपर चलना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपल सा कहा, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, ट्रेन में बैठो, मेट्रो में बैठो, जहां बैठो दो काम करो, एक तो भगवत गीता यहाँ पर रखी है, आप लोगों के लिए डिस्प्ले की गई है, जिनके पास ना हो वो आज भगवत गीता को लेकर के जाए, भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है, क्रिमिनल को इस ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, और उसकी क्रिमिनल की बात मान ली जाती है तो उसके अंदर जो कहा गया है वो झूठ है, वो तो सच है, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए। कहते हैं, वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, सिमिलरली वन श्लोक अ डे कीप्स यमदूत अवे। यमदूत आपके जीवन में नहीं आएंगे अगर रोज आप एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ें। तो ये बहुत अच्छा है कि आज हम इस शोक सभा के द्वारा इस मैसेज को दे पा रहे हैं और आप इस मैसेज को रिसीव कर पा रहे हैं। इफ आई एम स्पीकिंग प्रॉपरली, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप किसी के ऊपर से जा रहे हो या आप टाइम गुजार रहे हो कि चलो जल्दी जल्दी हो जाए। आप इस इंपॉर्टेंट मैसेज को लेके जाइए कि भगवत गीता पढ़ना अत्यावश्यक है। मेरा बेटा 8 वर्ष का है, 2 बच्चे हैं, 1 3 साल का है। दोनों बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ स्कूल से आने के बाद में, वैसे तो मैं मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं थोड़ा, तो मैं जब शाम को अपने सेवा से वापस जाता हूँ तो दे वेट फॉर मी, और जब भी हमें समय मिलता है तो हम गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। और इवन स्कूल में उसके स्कोर कभी कभी, वैसे तो अच्छा पढ़ने में 90% आते हैं, लेकिन कभी अगर कुछ कम भी आता है तो कई बार मेरे पेरेंट्स बोलते हैं थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे। मैंने कहा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इनको गीता को समझना, क्योंकि अगर ये पढ़ के मान लीजिए 99% लेके इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से MD कर लिया, MBBS करा, MS कर लिया, सर्जन बन गया, लेकिन चरित्र डेवलप नहीं किया, कैरेक्टर नहीं बना पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अब एक ही जगह दिमाग लगा सकते हैं, या तो हम सारा टाइम फिलॉसफी पढ़ लें, या तो सारा टाइम अपनी NCERT CBSE की बुक्स पढ़ लें, उतना ही टाइम हमारे पास, उतना ही ब्रेन है हमारे पास, तो वो इतना फोकस हो जाते हैं, इतना ज्यादा पेरेंट्स प्रेशर देते हैं एक्स्ट्रा एजुकेशन, ट्यूटोरियल्स में जाना और कोचिंग क्लासेस में जाना कि दे डोंट हैव टाइम टू रीड भगवत गीता। पहले कम से कम मॉरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट स्कूल्स में होता था, लेकिन आजकल तो वो भी चला गया। रामायण अगर पढ़ने लग जाए तो मॉरल साइंस मिल जाए, गीता पढ़ने लग जाए तो मॉरल साइंस मिल जाए, भागवत पढ़े तो मॉरल साइंस मिल जाए। रामायण में लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। तुलसीदास कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले नाथ शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान, उठकर के जो भगवान है मात पिता गुरु नवी ही माथा, अपना माथा उनके चरणों पे रखो। आज तो लोग पैर छूना भूल गए, बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए, जो छूते भी हैं वो घुटना छूते हैं, पांव को छूते है ना, क्योंकि कमर में दर्द होता है बच्चों के भी आजकल, मेरे भी है, लोअर बैक पेन होता है। हमारी खाने पीने की हाव हवा इतनी बदलती जा रही है कि हम घुटना छू के काम चलाते हैं और सामने वाला भी बस ऐसे ही कह देता है खुश रहो। अभी देखा जाए तो खुश रहो नाम का कोई आशीर्वाद है ही नहीं, क्योंकि इस मेटीरियल वर्ल्ड में कोई खुश रह नहीं सकता। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा मां उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालय अशाश्वतम, हे अर्जुन मैंने इस जगत का नाम रखा है दुख आलय। जहां विद्या दी जाती है उसके घर को कहते हैं विद्यालय, जहां भोजन मिलता है उसके घर को कहते हैं भोजनालय, जहां मदिरा मिलती है उसके घर को कहते हैं मदिरालय, जहां बर्फ मिलती है हिम उसके घर को कहते हैं हिमालय, जहां पुस्तक मिलती है उसके घर को कहते हैं पुस्तकालय या ग्रंथालय, इसी तरह जहां दुख मिलते हैं उसके घर को क्या कहेंगे दुखालय। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता लीजिए खुद पढ़िए लिखा है उसमें माम उत्पत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस जगत के, पहला तो इसमें कभी कोई खुश नहीं रह सकता दुखालय, और दूसरा अशाश्वत, यहां पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। मैं कहूं मेरे पिता शाश्वत हैं एक दिन जाना पड़ेगा, मैं कहूं मैं शाश्वत हूं परमानेंट हूं एटर्नल हूं जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस संसार में हर चीज अशाश्वत है, दूसरा दुखालयम दुखों का घर है। केमिस्ट शॉप में जाकर के बोलो गिव मी 2 pair of shoes, दवाई की दुकान पर जाकर बोलो मुझे जरा दो जोड़े जूते दे देगा। ऐसे दुखालय में हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, अरे दुखालय में आशीर्वाद दिया खुश रहो दे कैसे, जगह का नाम ही दुखालय, उसमें खुश कैसे रहेगा। उसको बोलना चाहिए आशीर्वाद शास्त्र में लिखा गया, बुजुर्गों को बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति हो जाए, और कृष्ण में मति हो गई तो कृष्ण का एक नाम है आनंद। इसीलिए नंद के घर जब जन्म होता है कृष्ण का तो भजन गाया जाता है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, कृष्ण का नाम है आनंद। अगर बच्चे को आपने बोल दिया कृष्णेर मतिर अस्तु, इसकी मति कृष्ण में हो जाए तो उसको क्या मिल गया आनंद, क्योंकि कृष्ण तो आनंद, तो खुश रहो तो दुख रहो में बदलता रहेगा, कभी खुश रहो कभी दुख रहो, कभी खुश रहो कभी दुख, लेकिन आनंद मिल जाए तो फिर वो कभी निरानंद में परिवर्तित नहीं होता। क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंदर ढूंढ कर देख लीजिए, मेरी पत्नी ने हिंदी में एमए किया है, मैंने उससे प्रश्न पूछा था एक बार जब हमारा नया नया विवाह हुआ, क्या आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द है अपोजिट, तो वो बोलती है कि नहीं हमने तो कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि आनंद जो सुख है उसका दुख उल्टा शब्द विपरीत शब्द होता है सुख उसका दुख है ना, अंधेरे का उजाला दिन का रात अच्छे का बुरा, लेकिन आनंद का तो उल्टा शब्द ही नहीं, विपरीत शब्द विपरीत आता शब्द ही नहीं है, सोचिए। तो ऐसे कृष्ण के प्राप्त हो जाने पर, आनंद मिल जाने पर, जब ये जीवन आनंदमय हो सकता है, फिर भी हमारे जैसे लुटे पिटे व्यक्ति, अज्ञानी लोग सुख के पीछे भागते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आज के दिन हम इस भगवद गीता के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, और इसी मैसेज को देने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं। ये मंदिर तो है, लेकिन इसके साथ में आप देखेंगे ग्राउंड पे खुदाई चल रही है। नीचे बेसमेंट पर एक मंदिर बनाया गया, उसका मॉडल यहाँ पर रखा हुआ था, अभी हटाया गया, इसको बाहर रखा गया है। तो उस मॉडल के अंदर आप देखेंगे 2 एकड़ की जमीन पे एक बड़ा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में भगवान तो जितने में अभी खड़े उतने में तभी खड़े होंगे, 2 इंचेस एरिया, लेकिन बाकी स्थान किसके लिए होगा? अधिक से अधिक लोगों को एजुकेट किया जा सके। दिस नॉलेज जो है कैन बी गिवन टू मेनी मेनी पीपल। अभी हमारी सोसाइटी अज्ञानता में चली गई है, लोगों के पास में नॉलेज नहीं है। उनसे पूछो हु आर यू, तो दे टेल देयर नेम्स, आई एम दिस। बोले बट व्हेन यू डाई वेयर योर नेम गोज अवे, आपका नाम कहां चला जाता है, आप कहां चले जाते हो, सिर्फ पिक्चर्स में रह जाते हैं। अगर हम थे, अगर वो मैं था, तो मैं हमेशा क्यों नहीं रह सकता। तो आज अभी इस्कॉन द्वारका को शुरू हुए, 2012 में हमने शुरू किया था, 2013 में इंस्टॉलेशन हुआ, 2018 में भी तकरीबन 6 वर्ष हो गए हैं। इन 6 वर्षों में हमने तकरीबन 10,000 लोगों की फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म मीन्स उनको जीवन को परिवर्तित किया। जो डाइवोर्स केसेस थे उसमें डाइवोर्स बंद हो गया, जहां पर प्रॉब्लम्स थी वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फ्रस्ट्रेशन था फ्रस्ट्रेशन चला गया। शोक में लोग थे, किसी की यंग वाइफ की डेथ हो गई, किसी के यंग डॉटर की डेथ हो गई, ऐसी प्रॉब्लम्स में भी हरि नाम और भगवद गीता उनको इतना खुश रखते हैं कि वो मंदिर में आनंद से आ पाते हैं, नाच पाते हैं, बिकॉज उनके पास एजुकेशन है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और सब कुछ अनित्य है संसार में, कुछ भी नित्य नहीं है। तो अटैचमेंट किस चीज से? आपको आपके फोन से अटैचमेंट हो जाता है, स्मार्टफोन गिर जाता है तो कितना दुख होता है। जिस दिन सोचिए आपको शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, आत्मा को कितना दुख होगा कि अरे मेरा शरीर मुझसे ले लिया, और वो आत्मा बाहर रह सकती है 10 दिन तक, वहीं रहती है, ऊपर लाइट वेट हो जाता है और अपने घर की छत पे अटक जाती है, क्योंकि अभी 13वें दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। 10 दिन तक देखता रहता है मेरे बच्चे मेरे साथ में क्या क्या कर रहे हैं, मेरे लिए गीता का प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या अपने बैठ के कचौड़ियां खा रहे हैं, 4 दिन बाद रिश्तेदारी में घूम रहे हैं। एवरीथिंग दी सोल ऑब्जर्व्स, पूरी यात्रा डिटेल्ड है गरुड़ पुराण के अंदर कि 16 ऐसे स्टेशनों पर उस आत्मा को रुकना पड़ता है, जहां पर बार बार पूछा जाता है आपके घर के पुत्र पुत्री भक्त करते हैं कि नहीं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर भगवान का नाम लेते हो तो जहां पर वारी वर्षा होती है वहां पर उस आत्मा को छाता दिया जाता है कि आपके बच्चे भक्त हैं, इसलिए आपको हम एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं। जहां पर भारी पत्थर गिरते हैं वहां पर एक शेल्टर दिया जाता है कि आप यहां खड़े हो जाइए, लेकिन जिनके बच्चे जिनके परिवार में उन्होंने संस्कार नहीं दिए कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हिंदुस्तान का ग्रंथ भगवद गीता पढ़ो, उन लोगों को पत्थर सहने पड़ते हैं, ओले सहने पड़ते हैं। और फिर वैतरणी नदी आती है जहां पर एक गाय की पूंछ पकड़ के उसको गाय लेकर के वैकुंठ धाम की ओर जाती है, वहीं पर ये व्यक्ति को गाय नहीं ले जाती और कहती है कि तुम यहीं जाओ नरक लोक की ओर, क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिए, तुम सिर्फ खाते थे पीते थे टीवी देखते थे, बड़ा बंगला बड़ी गाड़ी में थे, लेकिन तुमने कभी मंदिर निर्माण में दान नहीं दिया, तुमने कभी गीता पुस्तक वितरण में दान नहीं दिया, तुमने कभी भक्त प्रसाद वितरण में दान नहीं दिया, तुमने अपने धन का दुरुपयोग किया है। इसके कारण जितना तुमने दुरुपयोग किया उतना तुम्हारी आत्मा को कष्ट सहना पड़ेगा। अभी कई लोग बोल सकते हैं देखा जाएगा, कल किसने देखा, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं अरे ये सब फालतू बातें हैं, कल किसने देखा। बोले अगर आपने कल नहीं देखा तो व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी, करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो करता है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेकिन जो संस्कारों में इन्वेस्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं स्टूपिड फैलो, क्योंकि संस्कार तो कुछ किसने देखा जी, कौन मेरा कौन सा सब यही है, क्योंकि शास्त्र पढ़ता नहीं उडरता है, व्यक्ति पढ़ लूंगा सच्चाई से अवगत हो जाऊंगा तो मेरा एंजॉयमेंट रुक जाएगा, मैं शराब नहीं पी पाऊंगा, मैं मांस नहीं खा पाऊंगा, मैं तो अपनी सब मुझे भजन करना पड़ेगा, मैं तो फंस जाऊंगा। लेकिन वो समझता नहीं है भजन करने वाला उस मांस खाने वाले से ज्यादा आनंद में रहता है। आप देखिए अल्कोहल पीने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, पानी पीने के लिए कम पैसा लगता है, मांस खाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, सब्जी खाने के लिए कम पैसा लगता है, ऐसी जगहों पे विदेश जाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, वृंदावन जाने के लिए कम पैसा लगता है, तो आप देखें आदमी नर्क जाने को भी तैयार है ज्यादा पैसे लगा के, और वैकुंठ धाम जाने को तैयार नहीं है कम पैसे लगा, तो ये पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए कि जैसे अभी ये मंदिर निर्माण हो रहा है, तो इस मंदिर निर्माण में हमारा यहाँ डेस्क है टेम्पल कंस्ट्रक्शन, अगर आप देख सकते हैं तो आपको ऐसे स्थानों पे आकर के जरूर अपने माता पिता पुत्र पुत्री के लिए दान देना चाहिए। व्हाटएवर जो भी आपको भगवान ने जितनी भी शक्ति दी, यू शुड गिव समथिंग। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, अगर मैं भी किसी स्थान पर जाता हूं, हम भी जब जिस मंदिर में जाते हैं हम ट्राई करते हैं कि वी शुड गिव, बिकॉज गिविंग इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। व्हेन यू गिव यू फील बेटर, व्हेन यू होल्ड यू फील फ्रस्ट्रेटेड। एक नदी है जिसमें पानी रुक गया है, उसमें एल्गी आ जाती है, उसमें पूरा पूरी काई जम जाती है, लेकिन जो नदी बहती रहती है उसका आनंद जल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, स्वादिष्ट होता है। तो हमको भी अपने धन को अपनी लक्ष्मी को रोकना नहीं चाहिए, उसको लगाना चाहिए किसकी सेवा में, ईश्वरम परम कृष्ण, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर हम एक एक परिवार के नाम की ईंट लगा रहे थे, ब्रिक्स फॉर ईच एंड एवरी वन। तो आप चाहे तो प्रभु जी से संपर्क कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास, एंड ही विल टेल यू कि आपके परिवार के नाम की ईंट, आप रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन वो ईंट, वो ब्रिक, वो नाम सदा रहेगा। आज भी हम जाते हैं कई मंदिरों पे जहां पर हमारे बुजुर्गों ने दान दिया, तो वहां पर वो 800 साल पुराने हमारी परंपरा के नाम बताते हैं। आपने कभी ट्राई किया किसी जगहों पर जाकर के जहां आपके पूर्वजों के नाम लिखे गए हो? पांडुलिपियां मिलती हैं, चेन्नई की साइड में है, हरिद्वार की साइड में है, बनारस में है, काशी में, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर हमारे घर में बताया गया, जैसे हमारी फैमिली लीनेज में, कि ऐसे ऐसे मंदिरों में हमारे पूर्वज गए थे, वहां जाओ तो पूछो तो सुंदर लगता है देखने में। 800 साल पुरानी पांडुलिपि निकालते, कहते आपके ऐसे ऐसे वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया, और उसी के कारण आज उसी कृपा से उन्हीं लेनेज में एक बच्चा भक्त बन पाता है। ये उनकी कृपा होती है, बिकॉज समवेयर दे डिड समथिंग, बिकॉज ऑफ द पायस क्रेडिट्स आई बिकम अ डिवोटी। हमें लगता है ना हम भक्त कैसे बन गए, कोई किसी को भक्त नहीं बना सकता, ये बहुत सूक्ष्म रूप में चल रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तीन कार्य करें, पहला भगवत गीता का रोज पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और तीसरा जो भी धन हमारा है उस धन में से आधा धन अपने परिवार की सेवा में लगाएं, अपने बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाउस, जो भी कुछ करना है उसमें 50% धन लगाएं। 50% जो बचे उसमें से 25% ऑफ द होल वो हमें अपने इमरजेंसीज के लिए रखना चाहिए, और बाकी का जो 25% है उसमें से हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की, कभी भगवान के प्रसाद की, कभी भगवान के मंदिर निर्माण की, कभी पुस्तक खरीद के ले जाओ, चाहे आप दान ना भी दे, मान लीजिए ये 130 रुपए का भगवद गीता आप खरीद के ले गए, इससे आपका जीवन बदल जाए। आप जानते हैं भगवद गीता मेरी ग्रैंड मदर ने 1985 में, मेरी ग्रैंड मदर को उनके ब्रदर ने ऐसी एक सेरेमनी पर शोक सभा में गिफ्ट किया था कि ये भगवद गीता, और मेरी दादी उस टाइम 1985 की बात कर रहा हूं, मैं छोटा था, तो मेरी ग्रैंड मदर को दिया, तो ग्रैंड मदर ने लाकर के हमारे घर में प्रदान कर दिया कि ये लो बच्चों पढ़ लो गीता। तो उनके पास बहुत सारे ग्रंथ पहले से बहुत पढ़ती थी, तो उन्होंने कभी हमें नहीं बोला कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, उन्होंने हमें गीता दिया, बोले छोटी बुक ये पढ़ लो। लेकिन यही वाली प्रभुपाद जी की गीता 1965 में प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इस्कॉन सोसाइटी बनाया, 1966 में, 65 में इंडिया से अमेरिका गए और 66 में इस्कॉन की संस्थापना करी, और आज तकरीबन 700 देशों के अंदर 700 टेंपल्स बन गए हमारे, 700 टेंपल्स वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर मैक्सिमम टेंपल्स बन गए हैं, अमेरिका में, यूरोप में, जिस भी जगह जाएंगे छोटी से छोटी कंट्री में आपको इस्कॉन का एक सेंटर या टेंपल जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से उनको जब वो भगवत गीता दी, मैंने पढ़ी नहीं, कॉलेज डेज आए, ऑफिशियल डेज आए, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया लाइफ में, लगता था कुछ पढ़ना चाहिए, तो सारा कुछ पढ़ के देख लिया, 1 मिनट स्ट्रेस फ्री, हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, जितने भी फिलोसफर्स की बुक्स है, सोक्रेटिस, सब पढ़ के देख लिया, वेस्ट हो गया, कुछ फायदा नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा। लेकिन फिर मुझे याद आया बचपन में दादी ने एक बुक दिया था गीता, उसको पढ़ना चाहिए। इन ईयर 2002 आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, और जब भगवद गीता पढ़ा तो बस फिर तो उसके बाद रुका ही नहीं, पढ़ने के बाद में तो जो सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए वो तो फिर पूरी पढ़ाई कर ली, जितना भी एमबीए में पढ़ा कि मैनेजमेंट में कभी कंपनी के अंदर डिस्टरबेंसेस हो जाए, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हो जाए तो उनको इन इन स्टेप्स के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। एक भी स्टेप नहीं लगता था, सिर्फ एक ही स्टेप लगता था भगवद गीता का स्टेप। और इसीलिए आज बड़ी बड़ी कंपनीज हमें बुलाती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेमिनार करने के लिए कि आप भगवद गीता सेमिनार करो। क्यों? अपनी कंपनी भगवद गीता के बिना नहीं चला सकते, चला तो सकते हैं लेकिन कभी इंप्लॉय छोड़कर चला जाता है, कभी इंप्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में नोक झोंक में क्लैशेस होते जाते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन उसको इंक्रीज करने के लिए इंप्लॉयर जो समझदार है वो कहता है नहीं, गीता लगाओ, गीता खुलाओ, गीता पढ़ाओ। तो हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमको भेजा जाता है कि ठीक है आप आ जाइए, आप हमें गीता में समझाइए कैसे हम गीता को अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। And it applies for everyone. We have Sikh community also who are coming on Janmashtami. Sikh लोग भी हैं जो जन्माष्टमी में आते हैं, गीता का उच्चारण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। एक हमारी माता जी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सिख धर्म और वैष्णव धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, सिखिज्म इन वैष्णविज्म। और आप देखेंगे तो सिख धर्म के अंदर भी राम का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है, भगवान राम का नाम आता है। सिख धर्म के गुरु थे रामदास, थर्ड गुरु। तो इसे अगर देखेंगे तो सारी संप्रदायों के अंदर, सारे धर्मों के अंदर एक ही चीज सिखाई गई है, भगवान से प्रेम करना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद क्योंकि कभी किसी हिंदू बनाने में नहीं लगे लोगों को, उन्होंने लोगों को सिखाया जिस भी धर्म में हो भगवान से प्यार करना सीखो। क्रिश्चियन कम्युनिटी थी अमेरिका में, पूरी कम्युनिटी आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। वेटिकन सिटी जहां पर मैक्सिमम चर्चेज ही चर्चेज है, वहां पर भी इस्कॉन के लोग हैं, वहां पर भी वेटिकन सिटी के लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोचिए टॉप मोस्ट नॉलेज है वैष्णविज्म। जितने भी इजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उन सारे इजम्स के अंदर से टॉप मोस्ट फिलॉसफी है वैष्णविज्म। और ये वैष्णविज्म आया कहां से? भगवद्गीता से। तो आपको इस भगवद्गीता को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में जितना हो उसको उतारें, तब आप देखेंगे आपका जीवन आनंदमय। क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है, धर्म तो होता है शरीर का। जिस बच्चे ने जन्म लिया सिख घर में वो बन गया सिख, जिसने मुस्लिम घर में जन्म लिया वो बन गया मुस्लिम, जिसने क्रिश्चियन घर में जन्म लिया वो बन गया क्रिश्चियन, जिसने हिंदू घर में जन्म लिया वो बन गया हिंदू। लेकिन आत्मा का क्या धर्म था? क्या गर्भ में उस बच्चे को पता था, उस आत्मा को मालूम था कि मैं कौन से धर्म की हूं? या फिर शरीर छोड़ जाने के बाद मुस्लिम शरीर हिंदू शरीर जला दिया जाता है, वो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो वो अगले कौन से शरीर में जाएगी? क्या वो दोबारा से सिख शरीर में जाएगी? क्या दोबारा से वो हिंदू शरीर में जाएगी? क्या वो दोबारा से मुस्लिम शरीर में जाएगी? तो ये रिलीजन जो है वो शरीर का रिलीजन, आत्मा का रिलीजन है, एक ही रिलीजन जो कि एंटायर यूनिवर्स के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। इस आत्मा का एक धर्म है, उसका नाम है सेवा, दी नेचर ऑफ सोल। आत्मा का नेचर है सेवा, टू सर्व। अब प्रॉब्लम ये है वो कंटामिनेट हो जाता है, जैसे बारिश की बूंद जब आकाश से गिरती है तो प्योर होती है, लेकिन जब वो मिट्टी में मिलती है तो मटहली हो जाती है, मटमैली हो जाती है। या फिर पानी एक बकेट में रखा हो तो साफ होता है, लेकिन उसमें रंग मिला दो तो वो रंगीन पानी बन जाता है। ऐसी आत्मा स्वच्छ है, आत्मा का नेचर है टू सर्व, सेवा करना। इसीलिए आप देखते हैं प्राय लोगों के अंदर सेवा का भाव होता है। आप जाइए तो लोग तुरंत कहेंगे हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। ये जो डायलॉग है ये व्यक्ति का नहीं है, ये उसकी आत्मा का है, नेचर है सोल का सेवा। जैसे नमक का एक नेचर है, नमक का नेचर है नमकीन। कभी आपने सुना मीठा नमक ले आना जरा, या कभी सुना हो नमकीन चीनी देना जरा। शुगर का भी एक नेचर है स्वीटनेस, फायर का नेचर है हीट एंड लाइट। ऐसे ही सोल का एक नेचर है टू सर्व, सेवा करना। लेकिन किसकी सेवा करना? यहां पर कंटामिनेशन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। टू सर्व होम, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे जब अमेरिका में लोग पूछते थे स्वामी जी टू होम टू सर्व, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे टू सर्व सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। इफ यू विल नॉट सर्व जी ओ जी गॉड, वन डे विल कम यू विल सर्व डी ओ जी डॉग। और इसलिए देखा जाता है जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो सोचते हैं चलो किसी रिश्तेदार से तो बनती नहीं ज्यादा, चलो डॉग की सेवा करें, देख 25 मिनट डॉग उसको बेल्ट डाल देते हैं और उसको लेकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। कहते तो हैं आई एम द मास्टर ऑफ द डॉग, पर आप देखेंगे डॉग खींच खींच कर मास्टर को ले जा रहा होता है, ऐसा नहीं लगता है देखने से अगर कभी देखें कि हु इज द मास्टर, मास्टर इज नॉट गाइडिंग द डॉग, डॉग इज गाइडिंग द मास्टर कि चलो मुझे यहाँ मोशन के लिए जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है, उसको खींच रहा है। तो वी बिकम द सर्वेंट ऑफ द डॉग, इट्स बेटर टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द गॉड। प्रभुपाद बोलते थे इंस्टेड ऑफ बिकम द सर्वेंट ऑफ द डॉग इट्स बेटर टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द गॉड। कृष्ण का सेवक बनना चाहिए और श्री कृष्ण का सेवक बनने के लिए एक ही काम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। 108 माला के अंदर मोती होते हैं और उनको 108 बार एक मंत्र को कॉन्टिन्यूसली बोलना होता है। दिस इज द बिगेस्ट मेडिटेशन। बताया गया है भगवत गीता के अंदर जितने भी योगा है, मेडिटेशन है, जितने भी शारीरिक योगाएं हैं, उन सब योगा में से द टॉप मोस्ट योगा लेटर इज भक्ति योगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एक बार आज प्रभु जी के लिए, ताकि उनको भगवान का धाम प्राप्त हो और उनके परिवार को भगवान की कृपा प्राप्त हो और जल्द से जल्द ये लोग अपने शोक से बाहर आ सकें, उनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जिसे आप लोग भी दोहराएंगे। यहाँ पर आप आए हैं सहयोग करने के लिए। शोक से किसी को निकाला जा सकता है भगवान का हाथ पकड़ा करके, है ना। एक व्यक्ति दलदल में है और दूसरा व्यक्ति भी दलदल में है, कहता डोंट वरी आई विल टेक यू आउट, निकाल सकता है। दलदल में फंसा व्यक्ति दूसरे दलदल में फंसा, वो व्यक्ति जो दलदल के बाहर है वो बोल सकता है आई एम थ्रोइंग अ रोप, इसको पकड़ो एंड आई विल ड्रैग यू आउट। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र की जो रोप है, रस्सी है, इसको फेंक करके बोलने वाला दलदल में फंसे हुए, शोक में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल सकता है। देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं बाहर निकल। इसीलिए पहले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को अलग अलग दिन निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मणों को बोला जाता था 11 दिन का शोक समारोह, 11 डेज इज द मॉर्निंग टाइम। क्षत्रिय के लिए 15 दिन, 15 डेज इज द मॉर्निंग टाइम, 17th डे 15 दिन के बाद 17वें दिन जाकर के वो लोग अपना, जैसे आप ब्राह्मण 11 दिन के शोक के बाद 13वीं करते थे, क्षत्रिय 15 दिन के शोक के बाद 17वें दिन पे फूड खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे अपने परिवार के लोगों को। और वैश्य जो होते थे उनका 21 दिन का मॉर्निंग टाइम होता था, शोक पीरियड होता था, और 23वें दिन वो लोगों को प्रसाद खिलाते थे। और शूद्र का जो होता था अनलिमिटेड मॉर्निंग टाइम होता था। तो ये क्यों निर्धारित किया गया समय, क्योंकि ब्राह्मण से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ब्राह्मण के पास सबसे अधिक ज्ञान हो, ब्राह्मण सबसे ज्यादा समझदार होगा और वो गीता पढ़ता होगा, शास्त्र पढ़ता होगा, तो वो आत्मा के शरीर से चले जाने के दुख से 11 दिन में बाहर आ जाएगा। क्षत्रिय क्योंकि 15 दिन लगेंगे, क्योंकि वो थोड़े से नीचे मोड में है, क्योंकि वो पैशन में रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, वीरता दिखाता है, तो वो अभी ज्ञान से थोड़ा सा दूर है, इसलिए वो ब्राह्मणों की कथा सुनकर के धीरे धीरे 15 दिन में बाहर है। जो वैश्य समाज था वो क्योंकि बही खाते पैसा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में इतना बिजी रहता था कि वो ब्राह्मणों की कथा सुन के 21 दिन में अपने दुख से बाहर आता था। लेकिन शूद्र इतना अटैच होता था शरीर से कि वो अनलिमिटेड टाइम तक भी बाहर नहीं, 3 महीने गुजर जाए, 4 महीने गुजर जाए, रोता ही रहता था, ओहो वो चले गए, ओहो वो चले गए, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता था कि कौन चला गया। आत्मा कभी जाती नहीं और शरीर कभी जिंदा होता है, शरीर तो है ही मरा हुआ, हम सब दिख रहे हैं जिंदा है लेकिन हम सबका शरीर तो मरा। द मोमेंट वी आर आउट ऑफ द बॉडी इट इज डेड बॉडी, इट्स अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंस, एक छोटी सी लाइन है। जैसे गाड़ी के अंदर जब तक ड्राइवर है गाड़ी चल रही है, चाहे मर्सिडीज हो चाहे ऑडी हो, लेकिन जिस पर ड्राइवर बाहर आ गया, चाहे उसके अंदर मर्सिडीज हो, ऑडी हो, फॉर्च्यूनर हो, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसमें ड्राइवर ही गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही हमारा शरीर 1 इंच भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही है जो उस गाड़ी को आगे बढ़ाती है। इसलिए गाड़ी का भोजन है डीजल, पेट्रोल, वैक्सिंग कराना, गाड़ी की पॉलिशिंग कराना, ये गाड़ी का भोजन है, लेकिन ड्राइवर का भोजन है उसको दाल चावल रोटी सब्जी खिलाई जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर का भोजन है कि हम फैट खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन्स खाएं, लेकिन आत्मा को प्रोटीन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को फैट खाने, कार्बोहाइड्रेट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा का तो एक ही भोजन है। क्या है? अब हम तीन बार साथ में मंत्र दोहराएंगे ताकि आप लोग उसे याद रखें। जरूर यहां से गीता लेके जाइएगा आज, अगर नहीं है आज नहीं ले जा सकते हैं तो कभी और ले जाइएगा, लेकिन अपने इस शरीर में रहते रहते गीता जरूर पढ़िएगा, और हो सके तो आज मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर दान भी अवश्य देके जाइएगा। नहीं दे सकते हैं तो अपना नाम नंबर देके जाइएगा कि हम कभी आकर के मंदिर के लिए जरूर सेवा करेंगे, बिकॉज अभी क्रिशुअल टाइम चल रहा है, यहाँ पर हम मंदिर निर्माण करेंगे। तो आप मेरे साथ तीन बार मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम।